ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल की नवीनतम राजनीतिक स्थिति से नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगों के प्रमुखों तथा राजदूतों को कराया अवगत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित है, प्रधानमंत्री का कथन। नेकपा एमाले ने 11वां महाधिवेशन मार्गशीर्ष 27 से 29 गति तक पोखरा में करने का किया निर्णय। संचार मंत्रालय ने जेनजेड प्रतिनिधियों के साथ सुशासन, डिजिटल परिवर्तन और युवाओं की भागीदारी पर की चर्चा। युवाओं ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज और सुशासन को बढ़ावा देने का दिया सुझाव। और हमास द्वारा गाजा में नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर सरकार का पूरा ध्यान केन्द्रित है। प्रधानमंत्री कार्की ने आज सिंहदरबार में नेपाल में रहे विभिन्न कूटनीतिक निकायों के प्रमुखों और राजदूतों को नेपाल की नवीनतम राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि निर्धारित समय पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों को बताया कि जेनजेड आंदोलन के बाद की जटिल परिस्थितियों में उन्होंने सत्ता संभाली है और चुनावों के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाना ही उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। परराष्ट्र मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि विदेशों में अस्थायी रूप से रह रहे नेपाली नागरिकों के वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को क्रमिक रूप से लागू करने के लिए सरकार बाह्य मतदान प्रणाली की संभावना तलाश रही है। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि चुनावों को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने आगामी चुनावों के लिए सभी मित्र राष्ट्रों के निरंतर सहयोग, सद्भाव और समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्की ने जेनजेड आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन की जानकारी दी और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच भी शुरू होगी। प्रधानमंत्री कार्की ने आंदोलन के दौरान ग्रस्त हुई भौतिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए सरकार द्वारा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इस कोष को अंतर्राष्ट्रीय दाता निकायों और विकास साझेदारों से भी सहयोग मिलेगा। नेकपा एमाले ने आगामी मार्गशीर्ष 27 से 29 गति तक पोखरा में पार्टी का 11वां महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में महाधिवेशन की तिथि तय की गई। ये जानकारी नेकपा एमाले के प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम ने दी। बैठक में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने महाधिवेशन की तिथि सहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसी तरह नेकपा एमाले की केंद्रीय समिति बैठक में इस निष्कर्ष तक पहुंची है कि संसद की बहाली का कोई विकल्प नहीं बचा है। में संसद की बहाली के लिए वर्तमान संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पक्षों के साथ सहयोग करने का निर्णय किया गया है। एमाले की केंद्रीय समिति बैठक ने संसद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने के बाद अब कोई पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय किया है। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में आज भी सदस्यों ने विशेष महाधिवेशन सहित समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। सानेपा स्थित पार्टी कार्यालय में 28 आश्विन से शुरू हुई इस बैठक में बोलने वाले केंद्रीय सदस्यों ने समय पर महाधिवेशन संपन्न कराने की तैयारी शुरू करने के लिए कार्यवाहक सभापति से आग्रह किया। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा है कि आगामी फाल्गुन 21 गति होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए पुलिस को संसाधन और मनोबल दोनों दृष्टि से समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। 70वें पुलिस दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित अमर प्रहरी के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि समाज की हर घटना में पुलिस अग्रिम पंक्ति में रहकर सुरक्षा प्रदान करती आई है और आगामी चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ये कहते हुए कि यदि नेपाल पुलिस के पास संसाधनों की कमी रही तो चुनाव कराना भी असंभव हो जाएगा। मंत्री अर्याल ने बताया कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्री अर्याल ने कहा कि पिछले भादर 23 और 24 गते जेनजेड आंदोलन के दौरान भी पुलिस अग्रिम पंक्ति में होने के कारण उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। जेनजेड प्रदर्शनों के साथ साथ कुछ दिन पहले बाढ़ और भूस्खलन में पुलिस द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अब आगे के दिनों में पुलिस को प्रविधि अनुकूल बनाकर काम करने की आवश्यकता है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा है कि राज्य के संस्थानों के माध्यम से सरकार कानून और विधि सम्मत तरीके से आगे बढ़ेगी। मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनजेड के नाम पर सरकारी कार्यालयों में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने जैसी गतिविधियों के संदर्भ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री खरेल ने कहा कि सरकार सुशासन स्थापित करेगी और कानून के शासन को लागू करेगी। मंत्री खरेल ने कहा कि सरकार सुशासन और चुनाव के मुख्य एजेंडा को पूरा करने के लिए सभी को साथ लेकर चलेगी। कल बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री खरेल ने ये भी सूचित किया कि बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण सहित विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली सेना ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वैश्विक संदर्भ में देखे गए आंदोलनों की तुलना में नेपाल का जेनजी आंदोलन अनुमान से अधिक तीव्र और व्यापक रहा। सैन्य मुख्यालय जंगी अड्डा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जेनजेड आंदोलन से सुरक्षा समस्या बढ़ने का आकलन किया गया था, लेकिन इसका दायरा और तीव्रता अनुमान से कहीं अधिक बढ़ी रही। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीनतम प्रविधि के प्रचार प्रसार और युवाओं की भागीदारी के विषयों पर जेनजी युवाओं के प्रविधि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए हैं। मंत्रालय में आज हुई चर्चा के दौरान संचार मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि जेनजी आंदोलन के दौरान उठे महत्वपूर्ण मुद्दों, सुशासन और आवश्यक प्रविधि संबंधी कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रविधि क्षेत्र से जुड़े युवाओं की ओर से आए सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। मंत्री खरेल ने कहा कि आपदा के समय प्रविधि के उपयोग से बनी पूर्व सूचना प्रणाली ने महत्वपूर्ण काम किया है और जनधन की क्षति को कम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास आदि क्षेत्रों के सुधार के लिए प्रविधि का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉ सीके राउत के नेतृत्व वाली जनमत पार्टी को विभाजित कर जन स्वराज पार्टी को पंजीकरण करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को लागू न करने का अल्पकालीन अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ की एकलपीठ ने आज जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉ राउत की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी किया है। पीठ ने विरोधी पक्ष की ओर से लिखित जवाब मांगते हुए आगामी कार्तिक सत्र गति सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है और ये आदेश दिया गया है कि सुनवाई पूरी होने तक आयोग का निर्णय लागू नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आश्विन 28 गति को जनमत पार्टी को विभाजित कर जन स्वराज पार्टी को पंजीकृत करने का निर्णय किया था, जिसके विरूद्व डॉ सी के राउत ने सुप्रीम कोर्ट में परमादेश सहित एक रीट याचिका दायर की थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि गाजा में हमास लड़ाकू समूह नागरिकों को लक्षित कर हमले जारी रखता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यदि हमास गाजा में मानवता के खिलाफ हमले जारी रखता है तो उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये चेतावनी उस समय आई है जब हमास शेष मृतक बंधकों की खोज और अमेरिकी मध्यस्थता वाले शांति समझौते के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ट्रंप ने गाजा में चल रही स्थिति को संबोधित करने के लिए एक दिन बाद ये बयान दिया है। इस चेतावनी के माध्यम से उन्होंने कहा है कि यदि नागरिकों को और बंधकों पर मानवता विरोधी हमले जारी रहे तो अमेरिका की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल की नवीनतम राजनीतिक स्थिति से नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगों के प्रमुखों तथा राजदूतों को कराया अवगत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित है, प्रधानमंत्री का कथन। नेकपा एमाले ने 11वां महाधिवेशन मार्गशीर्ष 27 से 29 गति तक पोखरा में करने का किया निर्णय। संचार मंत्रालय ने जेनजी प्रतिनिधियों के साथ सुशासन, डिजिटल परिवर्तन और युवाओं की भागीदारी पर की चर्चा। युवाओं ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज और सुशासन को बढ़ावा देने का दिया सुझाव। और हमास द्वारा गाजा में नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य होने की दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।